हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जैसे ही अरमान ठाकुर ने ये कहा, जोया एक नशा है, उसके कमरे में तुरंत तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। जैसे ही मेहर और अरमान ने दरवाजे की ओर देखा, वे दोनों हैरान हो गए। दरवाजे पर ताली बजाने वाली कोई और नहीं, बल्कि जोया अबीर सिंह राठौर थी। जैसे ही अरमान की नज़र जोया पर पड़ी और मेहर की नज़र जोया पर पड़ी, वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस तरह प्रतिक्रिया करें। जोया एक बार फिर जोरों से ताली बजाते हुए अरमान ठाकुर के करीब आने लगी। वाह वाह मिस्टर अरमान ठाकुर, वाह, मज़ा आ गया आपकी बात सुनकर। वाकई जोया एक नशा है, और याद रखना, नशा अच्छे अच्छों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, और ये नशा आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने आया है। जैसे ही जोया ने ये कहा, अरमान उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। अरमान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जोया को क्या कहे या क्या जवाब दे, क्योंकि जोया को देखकर वो सब कुछ भूल चुका था। उसके मुंह में कोई शब्द नहीं बन रहे थे जिनसे वो जोया को कुछ कह सके। वो केवल खाली नज़रों से जोया की ओर देखने लगा। तभी मेहर ठाकुर ने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हो, आखिर तुम्हें क्या रखा है? हाँ जोया अबीर सिंह राठौर, अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारती हो? तुम क्यों फिर से हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आ गई हो? जैसे ही मेहर ने जोया से ये सब कहा, जोया उसकी ओर देखने लगी। अचानक जोया ने अपने गार्ड के हाथ से बंदूक लेकर मेहर के माथे पर लगा दी। जैसे ही मेहर ने जोया के हाथ में बंदूक देखी और अपने माथे पर बंदूक लगी हुई देखी, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि जोया का एक्शन वो पहले ही देख चुकी थी और वो अच्छी तरह जानती थी कि जोया उसे गोली मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। वो थोड़ा सा हकलाते हुए बोली, जोया ये क्या कर रही है तू? तू पागल हो गई है? तुझे क्या हो गया है? तू ऐसी तो नहीं थी? तुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू मेरी जान लेना चाहती है अब? बंदूक देखकर मेहर उल्की सीधी बातें करने लगी। मेहर को इस तरह हकलाता हुआ देखकर जोया जोरों से हंसने लगी। मेहर और अरमान उसे हैरानी से देख रहे थे। वहीं अरहम ठाकुर, जो अपनी बहन मेहर की दवाइयां लेने गया हुआ था, जैसे ही उसने अरमान के वार्ड के बाहर बॉडीगार्ड्स की भीड़ देखी, वो डर गया और जल्दी से भागकर अंदर आने लगा। लेकिन जोया के बॉडीगार्ड्स ने उसे अंदर नहीं आने दिया और उसे बाहर ही पकड़ लिया। वो वहीं से खड़ा होकर चिल्लाने लगा, आखिर कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, अंदर मेरा भाई है, मेरी बहन है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरहम पूरी तरह बेचैन हो रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। तभी जोया ने अपने हाथ का इशारा किया और उसके गार्ड समझ गए कि जोया मैडम ने बाहर खड़े आदमी को अंदर आने की इजाज़त दे दी है। जल्दी ही अरहम ठाकुर सभी बॉडीगार्ड्स के बीच से निकलता हुआ अरमान के वार्ड में आ गया। जैसे ही उसकी नज़र जोया पर पड़ी, वो उसे हैरानी से देखने लगा। जोया को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जोया के हाथ में बंदूक थी और उसने वो मेहर के ऊपर तान रखी थी। तब अचानक अरहम के मुँह से निकला, जोया ये क्या कर रही हो तुम? तुम क्या मेहर आपी की जान लेना चाहती हो? उनका हाथ तोड़कर क्या तुम्हें चैन नहीं मिला? क्या तुम भूल गई हो कि मेहर आपी ने तुम्हारा कितना साथ दिया है? बचपन में मेहर आपी ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है? अरहम की बातें सुनकर जोया मुस्कुराती हुई अरहम के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ अरहम शाह उर्फ ठाकुर, तुम्हें क्या लगा ये सब पुरानी बातें मुझे याद दिलाकर तुम मुझे इमोशनल कर लोगे और इमोशनल ब्लैकमेल करके एक बार फिर मेरा फ़ायदा उठा लोगे? क्या तुम भूल गए तुमने मेरे साथ क्या किया, या फिर तुम्हारा ये भाई भूल गया कि इसने क्या किया है? जोया की आंखों में कई सारे सवाल थे। ज़्यादा देर अरहम ठाकुर जोया की आंखों में नहीं देख पाया। वो अच्छी तरह जानता था कि जोया जो कुछ भी कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। कुछ ही देर बाद गजाला जी, जो खाना खाने के लिए कैंटीन गई हुई थी, वो भी अरमान के वार्ड के पास आ गईं। जैसे ही उसने इतने सारे गार्ड अरमान के वार्ड के बाहर देखे, वो भी थोड़ी परेशान हो गईं और जल्दी ही अंदर आने लगी। तब एक गार्ड ने जोया के कान में बता दिया कि कोई और भी मैडम वहां आ रही है, तो जोया ने उसे भी आने के लिए कह दिया। गजाला जी जैसे ही अंदर आईं और उनकी नज़र जोया पर पड़ी, वे हैरान हो गईं। उसने तो आज तक जोया को देखा ही नहीं था। जोया के बचपन में उसने जोया को देखा था, आज पहली बार सामने से वो जोया को देख रही थी। जैसे ही गजाला जी की नज़र जोया के हाथ में पकड़ी हुई बंदूक पर पड़ी, वे हैरान हो गईं और पूछने लगीं, कौन हो तुम और इस तरह से मेरे बेटे के वार्ड में क्या कर रही हो, और ये बंदूक हाथ में लेकर क्यों खड़ी हो? जोया उस औरत को हैरानी से देखने लगी। जैसे ही उसने अरमान को अपना बेटा कहा, उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये अबीर सिंह राठौर की सौतेली माँ है। तब जोया ने बड़े ही अदब के साथ गजाला जी को सलाम करते हुए कहा, ओ सासू माँ, आप यहाँ? जैसे ही जोया ने गजाला जी को सासू माँ कहा, गजाला जी अपनी आँखें बड़ी कर जोया की ओर देखने लगी, कौन हो तुम और तुम मुझे सासू माँ क्यों कह रही हो? तब जोया मुस्कुराने लगी और बोली, मैं आपके सौतेले बेटे अबीर सिंह राठौर की बीवी हूँ। जैसे ही जोया ने ये कहा, गजाला जी का मुंह हैरत से खुला रह गया। एक तो उसके सौतेले बेटे ने शादी कर ली थी और उसे बताना तक जरूरी नहीं समझा था, और ऊपर से उसकी बीवी उसी के सामने बंदूक लेकर खड़ी हुई थी। गजाला जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। अभी जोया कुछ और कहना चाहती थी कि तभी उसका हाथ किसी ने बड़ी ही बेरहमी से पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि अरमान ठाकुर था, जो धीरे धीरे अपने बेड से उठकर जोया के ठीक पीछे खड़ा हो गया था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अचानक जोया को अपने करीब करते हुए बोला, फिर से अपने आप को अबीर सिंह राठौर की बीवी मत कहना। तुम पर अगर किसी का अधिकार है, किसी का हक है, तो सिर्फ और सिर्फ अरमान ठाकुर का है। जोया अरमान ठाकुर की आंखों में जुनून साफ देख सकती थी। जोया जब उसने पाया कि अरमान ठाकुर ने उसे खुद के इतने करीब कर लिया था, तब जोया ने जो बंदूक उसके हाथ में पड़ी हुई थी उसका एक कोना उसके माथे पर मार दिया। अरमान ठाकुर इस बार से एक इंच भी नहीं हिला, हालांकि उसके माथे से खून निकलना शुरू हो गया था, टप टप टप। लेकिन अरमान ठाकुर पर उस खून का कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह जोया का हाथ पकड़े हुए उसे देखता रहा।